ये आकाशवाणी है, अब आप वैष्णवी से समाचार सुनिए। प्रवर्तन निदेशालय ने नेशनल हेराल्ड अखबार से जुड़े धन शोधन मामले में कांग्रेस नेता सोनिया गांधी और राहुल गांधी के विरुद्ध दिल्ली की राउस एवेन्यू अदालत में आरोप पत्र दाखिल किया है। आरोप पत्र में कांग्रेस के विदेश मामलों के प्रमुख सैम पित्रोदा, सुमन दुबे और अन्य के नाम भी शामिल हैं। विशेष न्यायाधीश विशाल गोगने ने मामले की अगली सुनवाई के लिए इस महीने की 25 तारीख निर्धारित की है। निदेशालय ने इस मामले में अपनी जांच तब शुरू की थी जब सांसद सुब्रमण्यम स्वामी ने 2014 में एक शिकायत दर्ज कराई जिसमें सोनिया गांधी, राहुल गांधी और अन्य वरिष्ठ कांग्रेस नेताओं पर एसोसिएटेड जर्नल्स लिमिटेड की संपत्तियों को मात्र 50 लाख रुपए में हासिल करने का आरोप लगाया गया। श्री स्वामी ने आरोप लगाया था कि एजीएल की संपत्तियों की कीमत 2000 करोड़ रुपये से अधिक है। कांग्रेस द्वारा दिए गए कथित ऋण के बदले 50 लाख रुपए में एजेएल और उसकी संपत्ति हासिल करने के आरोपों को लेकर यंग इंडिया जांच के घेरे में है। इस वर्ष 12 अप्रैल को ईडी ने दिल्ली, मुंबई और लखनऊ में 661 करोड़ रुपए की अचल संपत्तियों को अपने कब्जे में लेने के लिए नोटिस जारी किया था। सर्वोच्च न्यायालय ने देश में बाल तस्करी से जुड़े अपराधों की रोकथाम और त्वरित सुनवाई के लिए कड़े दिशा निर्देश जारी किए हैं। न्यायालय ने कल उत्तर प्रदेश के बाल तस्करी मामले में आरोपियों द्वारा दायर अग्रिम जमानत याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए ये निर्देश जारी किए। न्यायमूर्ति जेबी पारदीवाला और आर महादेवन की पीठ ने देश के उच्च न्यायालयों को निर्देश दिया कि वे निचली अदालतों को निर्देश दें कि बाल तस्करी के मामलों की सुनवाई 6 महीने में पूरी की जाए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने डेनमार्क की प्रधानमंत्री मेटे फेडरिक्सन से टेलीफोन पर बातचीत की। दोनों नेताओं ने भारत डेनमार्क हरित रणनीतिक भागीदारी के लिए मजबूत समर्थन व्यक्त किया। उन्होंने दोनों देशों के लोगों के लाभ के लिए विभिन्न क्षेत्रों में सहयोग पर बढ़ाने पर चर्चा की। श्री मोदी ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में कहा है कि उन्होंने और सुश्री फेडरिक्सन ने आपसी हितों के क्षेत्रीय और वैश्विक विकास पर चर्चा की है। अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा है कि वक्फ संशोधन अधिनियम लोगों के अधिकारों की रक्षा करने और देश के नागरिक की जमीन को अवैध रूप से हथियाने की कोशिश को रोकने की केंद्र सरकार की नीति का हिस्सा है। कोची में मीडिया से बातचीत में उन्होंने कहा कि मुनम्बाम की जमीन को एक तरफा तरीके से वक्फ की जमीन घोषित करने की अनुमति नहीं दी जाएगी और प्रत्येक नागरिक के अधिकारों की रक्षा की जाएगी। श्री रिजिजू ने कहा कि मुनम्बाम जैसी स्थिति अब देश में कहीं भी नहीं रहनी चाहिए। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि विपक्ष लोगों को गुमराह कर रहा है। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा है कि समय के साथ पूर्वोत्तर भारत की प्रासंगिकता बढ़ेगी। उन्होंने विदेशी राजदूतों से आग्रह किया कि वे इस क्षेत्र को समझें और इसकी खूबियों को अपनी सरकार और उद्योगों के साथ साझा करें। विदेश मंत्री पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्रालय द्वारा आयोजित आगामी पूर्वोत्तर निवेशक शिखर सम्मेलन 2025 के लिए राजदूतों की एक बैठक को वर्चुअली संबोधित कर रहे थे। विदेश मंत्री ने कहा कि त्रिपक्षीय राजमार्ग और कलादान परियोजना जैसी पहल काफी महत्वपूर्ण है। उन्होंने ये भी कहा कि केंद्र सरकार ने पूर्वोत्तर क्षेत्र के विकास को प्राथमिकता दी है। दुबई में एक पाकिस्तानी नागरिक ने तेलंगाना के 2 युवकों की हत्या कर दी है। दुबई की मॉडर्न के बेकरी में काम करने वाले अष्टपू प्रेम सागर और श्रीनिवास की एक पाकिस्तानी सहकर्मी ने कथित तौर पर सांप्रदायिक विवाद के चलते बेरहमी से हत्या कर दी। आईपीएल क्रिकेट में पंजाब किंग्स ने कोलकाता नाइट राइडर्स को 16 रन से हरा दिया है। पहले बल्लेबाजी करते हुए पंजाब की टीम 15 ओवर 3 गेंद में 111 रन बनाकर ऑल आउट हो गई। जवाब में कोलकाता की टीम 15 ओवर 1 गेंद में 95 रन ही बना सकी। पंजाब किंग्स की ओर से युजवेंद्र चहल ने 28 रन देकर 4 विकेट लिए। आज दिल्ली में दिल्ली कैपिटल्स और राजस्थान रॉयल्स का मुकाबला होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।